हरिदास और जो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सह गोप गणयोस्तयोस्त पानी सुयवस कंदर कंद मूल ही। कोई गोपी दूसरे गोपी को संबोधित करते करके कहती है कि हे अबलाओं, हे सखियों, हे गोपियों, हंतायम अद्री अबला, हे अबलाओं, हे स्त्रियों, हे गोपियों, यह गिराजी गोवर्धन है। गिराजी गोवर्धन के विषय में कहते हैं हरिदास वर्य, भगवान के अनंत अनंत सेवक हैं, अनंत अनंत भक्त हैं, उनकी सेवा करने वाले लिए गिरदार जी सबसे श्रेष्ठ है। हरिदास वर्य, हम कल चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवतम में तीन लोगों को लिख के लिए हरिदास शब्द का प्रयोग किया गया है। उनका नाम न लेकर सीधे कह दिया गया है कि हरिदास, केवल और केवल तीन लोगों के लिए। जानते हैं वो तीन लोग कौन हैं?
उद्धव
कौन महाराज?
उद्धव
प्रहलाद महाराज, युधिष्ठिर महाराज। हाँ, युधिष्ठिर महाराज एक, उद्धव दो, और तीसरा गिरिराज, तीन लोग। तो हरिदास, ये तीनों हरिदास हैं भागवत में जिनकी चर्चा की गई है, लेकिन उन तीनों में से भी गिरिराज जी को हरिदास वर्य, हरिदासों में श्रेष्ठ। गिरिराज जी अनंत अनंत भगवान के वैकुंठ इत्यादि लोकों में, चाहे प्राकृत लोगों में, स्वर्गीय लोकों में, भगवान के अनेक अनेक भक्त हैं। उन्होंने भक्ति किया है, भगवान की सेवा किया है, लेकिन सबसे ज्यादा भगवान की किसने सेवा किया है? गिरिराज जी ने। हरिदास वर्य, और जब गिरिराज जी सेवा करते हैं तो सबसे आनंदित भी होते हैं, क्योंकि गिरिराज जी को भगवान कृष्ण और बलराम जी के चरणों का हमेशा स्पर्श मिलता है। भगवान इस पर चढ़ते हैं, घूमते हैं, गोचारण करते हैं, तो गिरिराज जी को हमेशा भगवान के चरणों का सानिध्य प्राप्त होता है। इसीलिए जब गिरिराज जी पर भगवान चलते हैं, भगवान के चरणों का उनको स्पर्श होता है, तो गिरिराज जी में रोमांच हो जाता है, पुलक हो जाता है। रोमांच के रूप में वृक्ष रहते हैं और अश्रु के रूप में मानसी इत्यादि गंगा अनेक झरनाएं नदियां प्रवाहित होती हैं। इसीलिए गिरिराज जी गोपियां कह रही हैं कि हरिदास वर्य, हरिदास के सेवकों में से अन्यतम हैं, सर्वश्रेष्ठ गिरिराज जी हैं, और सेवा के करने के कारण इनको परम आनंद भी भगवान देते हैं, निरंतर इस पर विहार करते हैं। और गिरिराज जी भगवान की किस रूप में सेवा करते? मानम तनोति, भगवान का सत्कार करते हैं। भगवान जी गिरिराज जी पर आते हैं गोचारण के लिए, तो गिरिराज जी उनका सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। केवल भगवान का सम्मान नहीं करते हैं, अन्य गोप सखाओं का भी सम्मान करते हैं, उनकी भी सेवा करते हैं। केवल गोप सखाओं की ही नहीं, गायों की भी सेवा करते हैं। गायों के लिए पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त घास की व्यवस्था, और गायों को जल पीने के लिए जल की व्यवस्था, अनेक झरने प्रवाहित होते रहते हैं, तो गायें घास खाती हैं और इसके बाद पानी पीती हैं। आप लोग जानते हैं ना, एक संगीत सुने हैं ना, मुझे याद नहीं है लेकिन आपको याद करके अच्छा लगेगा, कि गाय घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, और किसी को याद है पूरा पूरा? छोटी छोटी छोटे छोटे गाल छोटे छोटे गोपियों ने कहा है, गाना में तो कहा गया है कि घास खाए गैया, दूध पिए ग्वाल, माखन खायो मेरो मदन गोपाल। मैं यह कह रहा था कि घास गिरिराज जी भगवान की गायों के लिए घास की व्यवस्था करते हैं। सह गो गणयो हस्तयोस्तत पानी ये सुयवस, पानी की व्यवस्था करते हैं, और सुयवस यवस जवस समझते हैं ना, गवत घास। तो भगवान की गायें इस पर चलती हैं, भगवान विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो भगवान की कुछ विशिष्ट लीला करना करने की गुफाओं की व्यवस्था करते हैं, भगवान गिरिराज जी की गुफाओं में निवास करते हैं, इसलिए गिरिराज जी भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। इनसे भी श्रेष्ठ किसी भक्त की आप लोग कल्पना करते हैं? ऐसा नहीं ना लगता है आप लोगों को, मैं ज्यादा सेवा करती हूँ चाहे करता हूँ, हम ड्यूटी रखे हैं, गोपाल जी को रोज पूजा करते हैं। तो गिरिराज जी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, हरिदास वर्जो, यह गोपियों की उक्ति है। गोपियों ने कहा है कि गिरिराज जी भगवान की सभी सेवकों में अन्यतम है, सर्वश्रेष्ठ सेवक हैं। तो गिरिराज जी हैं, और हम और भी गिरिराज जी के विषय में सुनेंगे। यह गोविंद कुंड है, तो गोविंद कुंड के विषय हम संक्षेप में कल कह चुके हैं कि इंद्र अपने मान जब भंग हुआ, इंद्र का गर्व नष्ट हो गया, तो ये समझ गए कि भगवान है। पहले तो गायों को, गोपों को, ग्वालों को, ब्रजवासियों को मारने का प्रयास किए, परंतु अंत में वो समझ गए कि भगवान है। तो बाद में गिरिराज पूजा के बाद, गिरिराज धारण के बाद यहाँ पर इंद्र आए थे भगवान से क्षमा याचना के लिए, हमसे भूल हुई, मैंने आपका अपराध किया। तो भगवान उस दिन जिस दिन आए थे, इंद्र तो यहीं थे, इसी स्थान पर इंद्र ने भगवान का गोविंदाभिषेक किया। यह गोविंद नाम भी ऐसे तो नित्य भगवान का नाम है, लेकिन उसी समय प्रकट हुआ, गोविंदाभिषेक हुआ, गोविंद का अभिषेक हुआ। तो मैं इसे थोड़े से संक्षेप में कल चर्चा कर चुका था। इंद्र जब स्वर्ग से आए थे तो हाथी लाए थे, ऐरावत हाथी, और सुरभि गाय लाए थे, कामधेनु गाय लाए थे। तो गाय का उन्होंने दोहन किया इंद्र, और स्वर्ग से ही गंगा जी का पानी लाए थे, गंगा जल लाए थे हाथी के सूंड में भरकर। वह अपवित्र नहीं माना जाता है, एक स्टोर होता है, हाथी लोग वहां पर पानी स्टोर कर लेते हैं और उसी से निकाल निकाल कर फेंकते हैं, शरीर पर फेंकते, बहुत पवित्र जल माना जाता है। तो गंगा जी का जल और सुरभि गाय का दूध, दोनों के साथ, दोनों से भगवान का इन्होंने अभिषेक कराया है, गोविंदा अभिषेक किया है। तो अभिषिक्त जो जल था, अभिषिक्त जो द्रव था, दूध और पानी का जो मिश्रण था, जो भगवान को स्नान किया गया, और उसी अभिषिक्त जल से इस कुंड का निर्माण हुआ। और जो भगवान का अभिषेक हुआ तो एक गर्त बन गया, और वहां पर कुछ कुंड, कुछ एकत्रित हो गया द्रव, तो यही है गोविंद, गोविंद कुंड, गोविंदाभिषेक यहाँ पर हुआ था। यह कुंड, इसके पूर्व भी हम थोड़ी सी कल चर्चा कर चुके हैं कि नंद बाबा और ब्रजवासी लोग, नंद बाबा के पूर्व भी, नंद बाबा के पिताजी परजन्य महाराज भी यहाँ पर इंद्र की पूजा करते थे। पहले काफी समय तक इंद्र की पूजा होती रही। परजन्य महाराज अपने जीवन काल में इंद्र की पूजा करते रहे, और जब परजन्य महाराज अपनी पत्नी वरियसी के साथ जंगल में चले गए, वानप्रस्थ ले लिया, तो अपने पुत्र नंद बाबा को उन्होंने उत्तराधिकार में यह पूजा भी दिया था, और संकेत भी किया था कि बेटा प्रति वर्ष इंद्र की सम्यक पूजा होनी चाहिए। तो यहाँ पर नंद बाबा अपने पूरे जीवन काल में इंद्र की पूजा करते रहे, परंतु जिस समय भगवान का आविर्भाव हुआ तो भगवान भी इंद्र पूजा में शामिल हुए थे, कम से कम 6 बार, 7वें बार तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन भगवान भी इंद्र की पूजा में शामिल होते थे। 7वें बार जब भगवान 7 वर्ष के हुए तो उसी समय भगवान ने मना कर दिया, इंद्र की पूजा नहीं करना है, हम लोगों को पूजा करनी है गिरिराज जी की। तो उसी भगवान ने ही गिरिराज जी की पूजा का प्रवर्तन किया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण इंट्रोड्यूस किए गिरिराज जी की पूजा के लिए। तो उस समय से प्रति वर्ष सभी ब्रजवासी लोग यहीं इकट्ठा होते थे। यह उत्सव गिरिराज पूजा ब्रजवासियों का सार्वजनिक रूप से वार्षिक उत्सव था। वर्ष में सभी ब्रजवासी इसी स्थान पर एकत्रित होते थे और गिरिराज जी की पूजा करते थे इसी स्थान पर, गोविंद कुंड के आसपास में। हम इसे कुंड के विषय में संक्षेप में बताए, एक यहाँ पर बहुत अन्यतम घटना घटी हुई है माधवेंद्रपुरी से संबंधित। माधवेंद्रपुरी के विषय में जानते हैं ना, माधवेंद्रपुरी कौन है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो भगवान है, कृष्ण ही जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम था ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी जी के गुरु को, गुरु कौन थे? माधवेंद्रपुरी। तो यह संबंध है, यह नाता है, परम गुरु चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु माधवेंद्रपुरी वो ब्रज में आए थे और ब्रज की परिक्रमा कर रहे थे, 84 कोस की परिक्रमा करते करते वे यहाँ पर आ गए, गिरिराज जी में आ गए, और फिर यहाँ आए तो गिरिराज जी की उनके परिक्रमा करनी थी। थोड़ा सा माधवेंद्रपुरी के विषय में थोड़ा परिचय है, इंट्रोडक्शन है, कि माधवेंद्रपुरी अपनी जीविका के लिए एक वृत्ति अपनाए थे वह उस वृत्ति का नाम है अयाचक वृत्ति। अयाचक वृत्ति, किसी से कुछ भी नहीं मांगना है। ऐसे सन्यासी कोई व्यापार नहीं करते थे, मांग कोई देता था तो उसी पर जीवन चलता था, लेकिन व्रत था कि किसी से कभी भी स्वप्न में भी भूल कर भी कुछ मांगेंगे नहीं, स्वप्न में भी नहीं। जागृत में तो मांगने का प्रश्न है, किसी भी परिस्थिति में मांगते नहीं थे। यदि कोई स्वेच्छा से दे देता था तो उसे ग्रहण कर लेते थे, यह वृत्ति अपनाए हुए थे। उनके वृत्ति का क्या नाम था? अयाचक वृत्ति, मांगेंगे नहीं। प्रश्न वाला दे देगा तो ठीक है, नहीं तो चलो। अगर पाता के लाइन में जो झगड़ नहीं करना, तो हमको रोटी दो, ये दो, ये तो नहीं। अब बैठे हैं, ले रहे हैं, तो प्रश्न वाला दे दिया तो ठीक है, और नहीं दिया तो क्या करेंगे। तो अयाचक वृत्ति, तो हम उनके कंसर अयाचक उनकी वृत्ति थी, मांगते नहीं थे। घूमते 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 एक दिन संध्या के समय वो पेड़ देखने कदम, यह भी कदम वृक्ष है और वो दूसरा वो कदम में वृक्ष है, उसी कदम में वृक्ष के नीचे इसके तट पर जप कर रहे थे संध्या के समय, और दैव योग से भगवान की विशेष इच्छा से दिन भर कुछ खाए नहीं थे, सुबह से कोई अर्पित नहीं किया था, इसीलिए पूरा दिन भर उपवास किए हुए थे। संध्या के समय यहाँ थे, पेड़ के नीचे बैठकर जप कर रहे थे, मुख मलान था, कुछ भी खाए नहीं थे, जप कर रहे थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उसी समय एक बच्चा आ गया, भगवान आ गए लेकिन छद्म वेश में, मयूर मुकुट बांध कर नहीं, हाथ में बांसुरी भी नहीं था, कृष्ण थे लेकिन एक साधारण ग्वाले के रूप में, गोप बालक के रूप में आ गए, और उनके हाथ में एक लोटा था, पात्र था, उसमें दूध था। तो बच्चा आकर माधवेंद्रपुरी को, छोटा सा बच्चा 8-7-8 वर्ष का, माधवेंद्रपुरी को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद कहा कि माधवेंद्रपुरी महात्मा जी, मेरी माँ ने दूध भेजा है, आप इसे ग्रहण कीजिए, ले लीजिए। तो महेंद्रपुरी को भगवान का जो वो शब्द सुने, तो दूध तो मीठा होगा था नहीं वही पता नहीं था, लेकिन कान में जो शब्द प्रवेश किया तो ऐसा लगा कि अमृत ही शब्द घुस रहा है। तो जो थकावट था, क्लांति थी, तो शब्द से ही खत्म हो गया। ऐसा इधर से प्रवेश कर रहा था तो ऐसे लगता है कि अमृत प्रवेश कर रहा है, और रूप देखे तो रूप भी ऐसा है, आंखों में गया तो वह भी अमृत के समय। उस छवि को, भगवान की वाणी को सुनकर और भगवान के छवि को देखकर एकदम मुग्ध हो गए, लेकिन भगवान भगवान के रूप में नहीं थे, साधारण ग्वाल बालक के रूप में थे। माधवेंद्रपुरी को बहुत अच्छा लगा। माधवेंद्रपुरी ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हारे किसने दूध भेजा? तो मेरी माँ ने भेजा है। तो माँ ने भेजा, उसको कैसे, मैं तो किस, मेरे पास तो कोई आया नहीं, मैं देखा नहीं, तुम्हारी माँ कैसे भेज दी? तुम्हारी माँ को कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँ, दिन भर खाया नहीं हूँ, और उसने कैसे भेज दिया? भगवान तो उत्तर देना है ना, कैसे माँ, तुम्हारी माँ तो घर में गांव में उधर रहती, उसको कैसे पता लगा? तो भगवान कहे कि महात्मा जी, आप यहाँ जप कर रहे थे तो हमारे गांव की कुछ स्त्रियां गोपियां जल भरने आई थी यहाँ पर, गोविंद कुंड से जल लेने आई थी, तो उन लोगों ने बताया। तो फिर उन्होंने, ठीक है, उन लोगों ने तो अभी बताया होगा ना, एक साधु बैठे हैं, साधु खाया है कि नहीं खाया, उनको क्या, उन्होंने कुछ पूछा नहीं, अरे हमारे गांव की स्त्रियां हैं, चतुर होती हैं, बुद्धिमान होती हैं, आपके चेहरे को देखकर उन्होंने अनुमान कर लिया कि साधु को दिन भर में कुछ भोजन नहीं मिला है, मलान चेहरा है, खाए पीने मुरझा जाता है, तो ऐसे देखकर उन्होंने बता दिया। तो उन स्त्रियों ने जाकर बताया मेरी माँ से कि यहाँ पर एक साधु महात्मा है और दिन भर कुछ खाए पिए नहीं, और मेरी माँ का यह व्रत है, मेरी माँ उदार माँ है, उसने व्रत लिया है कि इस क्षेत्र में कोई भी एक भी प्राणी एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। कुछ साधु महात्मा मांग कर खा लेते हैं तो ठीक है, और नहीं तो मेरी माँ उनको खिलाती है, उसका व्रत है। तो उसने उसको पता लग गया, इसलिए मेरी माँ ने हमको दूध भेजा है, यह दूध ग्रहण कीजिए। और इसके बाद मैं आप दूध ग्रहण कर लीजिए, इसके बाद मैं जाऊंगा। तो मधुन्द्रपुरी कहे कि आप बैठो, बड़ा अच्छा आपका आवाज मधुर ध्वनि लग रही है, बड़े सुंदर लग बेटा, यहाँ बैठो, और भी पूछना है आपसे। भगवान कहे कि नहीं, मेरे पास समय नहीं है, संध्या का समय है, गुदोहन का समय है, पिताजी गाय दूहेंगे और हमें बछड़ा पकड़ना है। जानते हैं ना, पिताजी गाय दूहते हैं तो बछड़ा को पकड़ना होता है ना, तो वही दूध पी जाएगा। गोदोहन का समय हो रहा है, मैं जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, आप दूध पी लीजिए, और मैं जब गोदोहन का काम पूरा हो जाएगा तो मैं अपना लोटा पात्र लेकर जाऊंगा। माधवेन्द्रपुरी से यह बात कहकर भगवान वहां से चले गए। भगवान तो चले गए, बाह्य रूप से चले गए, लेकिन छवि जो हृदय में बसे हुए तो वो छवि नहीं गई, उसे का चिंतन के जप करते रहे, जप करते रहे, दूध पिए। अब दूध पिए तो दूध कुछ और ही था, सामान्य दूध नहीं था, जिसको माँ यशोदा ने भेजा था और भगवान कृष्ण जिसको प्रस्तुत किए थे, वो कितना मधुर दूध होगा इसे हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं ना, कर सकते हैं? कितना दूध मीठा होगा है? कितना
क्या?
नहीं खाए हैं? अच्छा होता उस दिन आप भी रहते तो आपको माधुन को थोड़ा खिलाए, आप लोगों से कोई होता तो माधवेन्द्रपुरी से कहते कि हमको भी थोड़ा दे दीजिए कैसा लगता है। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोग बहुत वर्षों 500 वर्ष बाद आए हैं, आप 500-600 वर्ष ना माधवेन्द्रपुरी दूध पिए तो दिव्य अमृत में वो दूध था, अमृत का स्वाद भी निंदित हो जाता था, लज्जित होता, उस मिठास के सामने अमृत भी लज्जित हो सकता था। तो माधवेन्द्रपुरी ने दूध पिया और छवि वैसी थी, फिर यही प्रतीक्षा करने है कब वह बच्चा फिर आएगा, उसके ध्वनि में सुनूंगा, उसको रूप को मैं देखूंगा। करते 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 रात भर जप करते रहे, बैठे रहे, सोए नहीं। भोर हुआ तो उनको थोड़ी सी झपकी आ गई, झपकी समझते हैं ना, सोना और झपकी में अंतर होता है, सोते हैं तो सो जाते हैं, नींद आ जाती है, झपकी मतलब कथा सुनते सुनते आप लोगों को अनुभव है, सुन रहे वैसे ही माधवेन्द्रपुरी को हुआ, जब थोड़ी सी हल्की सी झपकी आई बैठे बैठे, तब तक स्वप्न आया और स्वप्न में वही बालक, लेकिन इस बार एकदम त्रिभंग ललित रूप में, कृष्ण रूप में। और स्वप्न में ही बच्चे ने बताया कि माधवेन्द्रपुरी जी, मेरा श्री विग्रह मैं, भगवान स्वप्न में उनको ले गए, सोए सोए ले गए एक झाड़ी में और बताया कि देखिए ये हाथ बझाड़ी मेरा श्री विग्रह है, एक नीचे गर्त के पृथ्वी के अंदर है, मुझे बहुत वर्षों से मुझे अंदर रहते समय हमें बहुत परिश्रम हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे सर्दी लगती है, मैं भूमि के अंदर पड़ा हूँ, मेरी सेवा नहीं हो रही है, आप कृपा करके मेरे को निकालिए यहाँ से और मंदिर बनाइए, वहाँ पर प्रतिष्ठित कीजिए और मेरी पूजा को आप प्रारंभ कीजिए। यह सब स्वप्न में हुआ। तुरंत ही माधवेन्द्रपुरी जग गए तो बच्चा तो नहीं था, भगवान तो वहां से अदृश्य हो गए, लेकिन स्वप्न में जो भगवान ने दिखाया था स्थान एकदम स्पष्ट दिखा था उनको। तो फिर सुबह में गांव में गए, अन्य और गांव में गए, गांव के लोगों से बताया उन्होंने कि ऐसा ऐसा हमको स्वप्न मिला है और भगवान श्री विग्रह के रूप में एक विशिष्ट झाड़ी में एक जमीन के नीचे हैं, आप लोग आइए, कुदाल लाइए, फड़वा लाइए और हम लोग निकालते हैं भगवान को। तो गांव के लोग प्रसन्न, बड़ी खुश है, सब लोग इकट्ठा हो गए, माधवेन्द्रपुरी को ले गए, थोड़ा सा गर्त को खाने और जमीन को खाने, तब तक भगवान का श्री विग्रह निकला। अरे गोपाल जी, गोपाल से विग्रह का नाम गोपाल था, विग्रह त्रिभुवन खूब बढ़िया सुंदर रूप था। माधवेंद्रपुरी ने यहाँ से दिखाई नहीं पड़ता है, आप उधर से देख सकते, इधर ऊपर वो मंदिर है वहां पर। उस दिन उन्होंने क्या किया कि छोटा सा शिला रहकर एक शिला से रख दिया और एक दूसरा पीछे से खड़ा कर दिया, वहीं पर भगवान का अन्नकूट समारोह हुआ। तो यहाँ के गांव के लोग सब लोग इकट्ठा हो गए। दूसरे दिन खूब बढ़िया से भगवान का अभिषेक किया गया। लिखा गया है कि 100 घड़ा में, नए घड़ा में पानी भरकर उस 100 घड़े के जल से भगवान का अभिषेक हुआ और इसके बाद भगवान को श्रृंगार किया गया और यहाँ पर भगवान की पूजा और प्रतिष्ठा प्रारंभ की गई। तो यह सब घटना इसी स्थान पर, देखिए वह कदम का वृक्ष है, ठीक उसी के नीचे माधवेंद्रपुरी जी बैठे थे। तो हमने संक्षेप में बताया माधवेंद्रपुरी की लीला है, भगवान को स्वप्न दिया था, वही श्री विग्रह गोपाल के रूप में प्रतिष्ठित था यहाँ पर ऊपर, परंतु वह श्री विग्रह इस समय यहाँ नहीं है, नाथ द्वारा में है। श्रीनाथ जी जानते हैं ना, उदयपुर के पास में वह स्थान है राजस्थान में, श्री विग्रह अभी मूल श्री विग्रह जिसका उद्धार माधवेंद्रपुरी जी ने किया था, अब वह अभी नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी में प्रतिष्ठित है, वहां की पूजा हो रही है। और हाँ, और यह देखिए, यह पुनित कर्तव्य होता है, पूरे परिक्रमा में भूल कर भी गिरिराज जी की शिला नहीं ले जाना चाहिए, एक भी इतना भी टुकड़ा भी गिरिराज जी से नहीं ले जाया जा सकता है। आप लोग कल हम लोग कथा कह रहे थे, गिरिराज जी साफ स्वीकार कर दी कर लिए लेकिन यहां से गए नहीं, आपके घर जाना थोड़ा ना चाहेंगे। गिरिराज जी ब्रज में रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि जहां तहां आप लेकर उधर उधर, तो यहां पर इकट्ठा कलेक्ट मत कीजिए। किसी को यदि लेना होता है, एक विशिष्ट परिपाटी है, विशिष्ट विधि है, क्या क्या उसमें कृत है, उपचार होता है, कैसे कैसे उसे परमिशन लेता है, लेना होता है ब्रजवासी से, किसी ब्राह्मण से, तब पूजा करने के ले जा सकते हैं, लेकिन अपने से ऐसा नहीं उठा लिए और लेकर चल दिए, बहुत भारी अनिष्ट होता है। इसे गिरिराज जी को यहाँ से ले नहीं जाना चाहिए, ले जाना है तो जो विशिष्ट विधि है उसका अनुसरण करके लेना चाहिए। तो यह है। और उस गोपाल जी के विग्रह के विषय में चूंकि परिक्रमा की बात है, तो चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ आए थे, और जो भगवान चैतन्य महाप्रभु 84 कोष की परिक्रमा करते करते गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे, तो जब यहाँ पर आए भगवान चैतन्य महाप्रभु, तो भगवान को यह पता लगा कि गोपाल जी का अति त्रिभंग ललित विग्रह है, सुंदर श्री विग्रह है, लेकिन वो श्री विग्रह उसका दर्शन हमको करना चाहिए। दर्शन करने के बाद दर्शन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का हृदय मचल गया और देखना ही चाहते थे भगवान को, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि गिरिराज गोपाल जी का श्री विग्रह गिरिराज जी के ऊपर प्रतिष्ठित था और चैतन्य महाप्रभु का यह व्रत था कि मैं अपने पैर से गिरिराज जी का स्पर्श नहीं करूंगा। गिरिराज जी स्वयं भगवान है अथवा अन्यतम भक्त है, तो उन पर मैं चढ़ूंगा नहीं, तो चढ़ूंगा नहीं, और गिरिराज भगवान का विग्रह ऊपर है तो दर्शन भी नहीं हो सकता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत दुखी हुए कि मैं भगवान के गोपाल जी के दर्शन से वंचित रह जाऊंगा, मुझे दर्शन नहीं होगा। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत चिंतित थे। उसी दिन क्या हुआ कि एक रूमर फैला, रूमर समझते है ना, अफवाह, मिथ्या कुछ कथन चालू हो गया, हल्ला हो गया कि यहाँ पर कुछ तुर्क लोगों का, यौन लोगों का आक्रमण इस क्षेत्र में होने वाला है, तुर्क लोग। तो सभी लोग चिंतित हो, क्योंकि वो लोग आते हैं तो क्या करते हैं, मंदिर तोड़ देते हैं, मूर्तियों को नष्ट करते हैं, पवित्र करते हैं, तो यहाँ के ब्राह्मण लोग पुजारी लोग बड़े चिंतित हुए, अब क्या किया जाए, वो आ रहे हैं तो मंदिर को नष्ट करेंगे, श्री विग्रह को भी नष्ट कर देंगे। यह सत्य कथा नहीं थी, रूमर मतलब झूठ, अफवाह ऐसे फैल गया था। तो पुजारी लोग क्या किए, श्री विग्रह की रक्षा के लिए, गोपाल जी की रक्षा के, उसको ले लिए और यहाँ से लेकर उस दिशा में उतर गए, दूसरी दिशा में। यहाँ एक गांव है, गांठोली गांव है, हम लोग एक दिन वहां पर जाएंगे, परसों दिन हम उस गांव में से ही गुजरेंगे, तो वो वहां पर रख दिए जाकर, छुपा कर किसी ब्राह्मण के घर में रख दिए कि विग्रह की रक्षा होनी चाहिए। जब वहां रख दिए तब इधर पता लगा कि अरे तो रूमर था, असत्य कथा थी, सत्य कथा नहीं थे, झूठ अफवाह ही फैला हुआ था। तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु उसका लाभ उठाए। उधर गाठोली गांव में रखा गया था श्री विग्रह, चैतन्य महाप्रभु घूमते घूमते वहां गए। वहां जाने के बाद चैतन्य महाप्रभु उसमें रहे, गोपाल जी का दर्शन किए। कहा जाता है कि 3 दिन तक चैतन्य महाप्रभु उसका दर्शन किए, 3 दिन तक उस गांव में चैतन्य महाप्रभु रुके। और उसके बाद पता लगे कि झूठी बात फैल गई थी, अफवाह था, झूठी बात थी। तो उसी समय क्या हुआ, फिर श्री विग्रह को लाकर यहाँ पर रख दिया। तो चैतन्य महाप्रभु को जो चिंता थी वह दूर हो गई। एक दैव योग से पता नहीं किसने अफवाह फैला दिया, रूमर फैला दिया कि तुर्क लोगों का आक्रमण होने वाला, वो आक्रमण हो नहीं रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु श्री गोपाल जी का श्री विग्रह का दर्शन किए थे, और श्री विग्रह का यहाँ पर हुए थे। मैं महाराज इससे प्रार्थना करता हूँ, परम पूज्य श्रील सुभक्त स्वामी महाराज, ये आपके गिरिराज जी के विषय में, पूजा के विषय में, अथवा जो कुछ थोड़ा सा कहेंगे, अब मनोजोग प्रश्न सुनिएगा यहाँ पर।